તારીખ 30/5/1996 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ 431, 439 અને 455 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 255.
સંગ કરને કા ભાવ આવે તબથી સંગ નહીં કરના હૈ એસા ભાવ કાયમ મુખ્ય રખ કરથી સંગ કા ભાવ હોના ચાહીએ. સંગ મેને યહાં સત્સંગ કા વિષય લિયા હૈ. મુમુક્ષ કો સત્સંગ કરને કા ભાવ આતા હૈ. ભાવ આવે તો એક વાત હૈ ઓર અભિપ્રાય હોના તો દૂસરી વાત હૈ. અભિપ્રાય મેં અસંગ હોના હૈ. સત્સંગ ભી અસંગ હોને કે હેતુ સે કરને કા હૈ. અસંગ હોને મેં સીધા કોઈ અસંગ હો નહીં સકતા. એક પત્રંગ 609 મેં કૃપાલુદેવને વો વાત દિયા હૈ કે અસંગ રહેના બહુત દુષ્કર હૈ, ઇસલિયે શ્રીજીને સત્સંગ કરને કી આજ્ઞા ફરમાઈ હૈ. તો બિના સત્સંગ કોઈ અસંગ હોને કો પ્રયાસ કરે કે મેં અકેલા બેઠ કરકે ચિંતમન કરકે સ્વરૂપ કા ચિંતમન કરકે આત્મા મેં લીન હો જાઉંગા તો ઓ વાત સંભવિત નહીં હૈ. એસા બન નહીં સકતા ક્યોંકે અસંગ જિસ કાર્ય પદ્ધતિ સે જિસ રીતિ સે હોના હોતા હૈ ઉસ રીતિ સે ખુદ તો અનજાના હૈ કૈસે કામ કરેગા. તો ઓ સત્સંગ સે સમજ મેં આતા હૈ. ઇસલિયે સંગ કરને કા ભાવ આતા હૈ. લેકિન સંગ કરને કા ભાવ આવે તબ ભી ઉસ વક્ત ભી હમારે લક્ષ્ય મેં હમારે અભિપ્રાય મેં વો બાત હોની ચાહીએ કે આખિર મેં અલ્ટિમેટલી હમકો અસંગ હોના હૈ. ઇસલિયે હમ સત્સંગ કર રહે હૈ. સત્સંગ કરને મેં સત્સંગ કરને કા હેતુ નહીં હૈ. અસંગ હોને કા હેતુ હૈ કે હમ અસંગ કૈસે હોય. પ્રશ્ન યે પૂછેંગે હમ સત્સંગ મેં કે હમ અંતર્મુખ કૈસે હો સકતે હૈ. અંતર્મુખ હોને સે સભી પરદ્રવ્યો સે પરિણામ કા સંપર્ક છૂટ જાતા હૈ. ઉસકો કહેતે હૈ કે અસંગપણા. તો એસા અસંગપણે કા અભિપ્રાય રખ કરકે હેતુ રખ કરકે સંગ કરને કા ભાવ આના ચાહીએ હોના ચાહીએ એસી ચર્ચા ચલી હૈ. તો સત્સંગ બિના કા ધ્યાન તરંગ રૂપ હૈ, હોઈ નહીં સકતા, બની નહીં સકતા. વો બીચમાં સ્ટેજ આતા હૈ. લેકિન અભિપ્રાય ક્યા હૈ ઉસકા સ્પષ્ટીકરણ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન યહાં પર દિયા હૈ કે સંગ નહીં કરના હૈ, મેને અસંગ હોના હૈ. એસા અભિપ્રાય મુખ્ય રખ કર ભી સંગ કા ભાવ હોના ચાહીએ. ઇસલિયે ભી જ્ઞાની સત્સંગ કરતે હૈ તો મર્યાદિત રૂપ મેં કરતે હૈ. એસા નહીં કે 24 ઘંટા કોઈ સત્સંગ કરતા હૈ. સત્સંગ મેં જો ભી સમજ મેં આઈ બાત ઉસકા પ્રયોગ કરને કે લિયે ભી સમય તો ચાહીએ અલગ. સ્પષ્ટીકરણ દિયા હૈ અસંગ હી હું એસી દ્રષ્ટિ રખ કર. દ્રષ્ટિ મેને અભિપ્રાય રખ કર, દ્રષ્ટિકોણ રખ કર અથવા એસા દ્રષ્ટિ કરને હેતુ સત્સંગ કી ભાવના રહેની ચાહીએ. સત્સંગ કી જો ભાવના હૈ તો ભાવના કે પીછે અભિપ્રાય હમારા સ્પષ્ટ હોના ચાહીએ. વરના સત્સંગ વો સાધન નહીં રહેગા, સાધ્ય હો જાયેગા. सत्संग तो एक बीच में आने वाला साधन है। जो लोग साध्य यथार्थ रूप से निश्चित नहीं करते, ऐसे लोग साधन को ही साध्य बना लेते हैं और वही करने लग जाते हैं। तो उस तरह से तो विधि उल्टी हो जाएगी, यानी विधि की भूल हो जाएगी, ग्रहित हो जाएगा। अत्यारे तो द्रव दृष्टि प्रकाश 47 पत्र द्रव दृष्टि प्रकाश में ठीक। पछे 439 लेंगे, 49 आ बाजू ना पाने छे 197 पाने। प्रश्न, अंदर में तो कुछ दिखता नहीं और स्थिरता होती नहीं स्वरूप में, इसलिए सुनने का भाव रहता है, क्या करें? कोई मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है। तो देखिए, हमको तो अंदर में कोई आत्मा दिखता नहीं है, और जब आत्मा नहीं दिखता है तो आत्मा में स्थिरता तो कहाँ से होगी हमारी? इसलिए ऐसा अभिप्राय रहता है कि कोई सुनाने वाला मिले तो हम सुनते रहें, और बहुभाग ऐसा वहां बनता है था संगढ़ में कि गुरुदेव तो दो दफे व्याख्यान देते थे, बाद में कोई विद्वान वगैरह कोई अलग अलग जगह अलग अलग स्वाध्याय सत्संग चलता था, जिनको अनुकूलता होती है वो लोग सुनते थे। तो ऐसे कोई मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि अंदर में तो हमारा चलता नहीं कुछ, इसलिए बाहर में सुनने का अभिप्राय रहता है और हम सुनने का कार्य भी कर लेते हैं, और करे भी क्या, इसके सिवा क्या करे? अंदर में तो कोई व्यवसाय तो है नहीं, तो ऐसे फालतू निकम्मा बैठे, इसके बजाय कहीं भी कोई सुनाने वाला हो तो हम सुनने को बैठ जाएं, दो बात सुनने को मिलेगी। तो क्या हमारा ये प्रकार ठीक है? हमको तो दूसरा कोई सोचता नहीं है, करे भी क्या, क्या करें हम? ऐसा एक उलझन में से ये प्रश्न आया है। ये बहुत अच्छा वचनामृत है इस विषय का। समाधान देते हैं कि इसमें तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं आई। देखो, बहुत कड़क प्रत्युत्तर दिया है। क्या दिया है? कि विधि की भूल है, यहां भी साधन ही साध्य हो जाएगा। अभिप्राय में वो बात नहीं है कि सुनने से लाभ हो जाएगा, वो अभिप्राय में होना नहीं चाहिए। इसमें तो व्यवहार श्रद्धा भी नहीं आई। निश्चय श्रद्धा की बात तो बहुत दूर रही, व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। सुनने का अभिप्राय ही नहीं होना चाहिए, ठीक। बहुत स्ट्रांग उत्तर मिलता है। अभिप्राय, हम तो अभिप्राय की दृष्टि से बात करेंगे। उन्होंने बहुत जगह दृष्टि प्रधान और अभिप्राय प्रधान ही उत्तर दिया है। तो अभिप्राय की दृष्टि से तो सुनने का अभिप्राय नहीं होना चाहिए। अभिप्राय में तो स्वरूप में लीन होने का ही अभिप्राय होना चाहिए। अब कहते हैं कि सुनने का राग होना और सुनने का अभिप्राय होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। राग हो सकता है लेकिन अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा राग हो गया ऐसा अभिप्राय होना नहीं चाहिए, वरना क्या हो जाएगा कि जिस जिस प्रकार का धार्मिक साधन का राग आएगा, विकल्प आएगा, अगर अभिप्राय वही होगा तो अनंतानुमंदे का राग हो जाएगा। राग करने का अभिप्राय वही अनंतानुबंधे का अभिप्राय, राग का राग हो गया वो, क्या हुआ? राग का राग वही अनंतानुबंधे का अभिप्राय है। नहीं, सुनने का निषेध नहीं है, भूमिका अनुसार सुनने का भाव आवे तो इस भूमिका का ठीक बात आवे होना होता है, लेकिन अभिप्राय में क्या है कि ऐसा राग करना वो अभिप्राय नहीं होना चाहिए। सुनते ही इधर का अंतर्मुख का प्रयास चालू हो जाना चाहिए, तो सुनते ही प्रयास हो जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं सुने और प्रयास हो जाना चाहिए वो बात तो नहीं कही। सुनने का राग आएगा, सुनने का भी होगा, लेकिन सुनते रहें वो बात होना नहीं चाहिए। सुनते ही अंतर्मुख होने का प्रयास चालू हो जाना चाहिए, मैंने प्रयोग चालू हो जाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट इसके ऊपर जरा स्पष्टीकरण विशेष रूप से दिया है कि तत्व श्रवण के संबंध में ऐसा अभिप्राय रह जाना कि श्रवण करते करते आत्मलाभ हो जाएगा, तो वह साधन विषय बुद्धिपूर्वक की भूल है, इसलिए जिससे ग्रहित मिथ्यात्व होता है इसलिए व्यवहार श्रद्धा नहीं रही। व्यवहार श्रद्धा क्यों नहीं आई इसमें कि अभिप्राय की भूल हो गई तो बुद्धिपूर्वक की भूल हो गई कि श्रवण करते करते लाभ हो जाएगा, ऐसे तो लाभ होता नहीं है। आत्मलाभ तो अंतर्मुख होने से ही होता है, किसी भी अन्य प्रकार से नहीं होता। जिसे सुनते ही प्रयास चालू होता है ऐसे वर्तमान पात्र जीव को वैसी भूल नहीं होती। क्या कहते हैं कि जो वर्तमान पात्र है, पात्रता में अनेक प्रकार है, गर्भित पात्रता होती है, सामान्य पात्रता होती है, विशेष पात्रता होती है और वर्तमान पात्रता होती है, सब में अंतर है। गर्भित पात्रता वाले की पात्रता दिखाई नहीं देती सामान्य मनुष्य को, किंतु ज्ञानियों को दिखाई देती है। जैसे भगवान महावीर का सिंह की पर्याय का गर्भित पात्रता का ज्ञान मुनिराज को हुआ, तो ऊपर से नीचे उतरे तो चारण रुद्रधारी मुनि थे, दो लब्धि वाले थे, उनको ये पता चल गया कि भगवान महावीर का जीव है उतना ही नहीं, वर्तमान में उसकी पात्रता भी तैयार है लेकिन गर्भित रूप से है। सिंह की पर्याय में तो कुछ करता नहीं, मुमुक्षु के योग्य कार्य, तो पात्रता कैसी माने जाए, लेकिन गर्भित पात्रता देखी और उसका समय भी उनके अंदाज में आ गया, तो उसको उपदेश दिया। तो गर्भित पात्रता वाले का कोई बाह्य सिम्टम, बाह्य चिन्ह, बाह्य लक्षण दिखता नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन ज्ञानी के सातिशय ज्ञान में वो पता चलता है कि ये जीव गर्भित पात्र है, तो मौके पर वो काम कर लेता है और बहुत तेजी से काम कर लेता है, ये गर्भित पात्रता का स्वरूप है। सामान्य पात्रता होती है तो उनको दर्शन का अनुभाग मंद होता है, ज्ञान में निर्मलता भी आती है। विशेष पात्रता वाला, उत्कृष्ट पात्रता वाला होता है तो वो मुमुक्षुता को वर्धमान करके आगे बढ़ता जाता है, और वर्तमान पात्र में इतनी तेज पात्रता होती है कि सुनते ही उनका प्रयोग चालू हो जाता है, वो देर नहीं करता। जो बात समझ में आई और भीतर में तुलनात्मक दृष्टि से तोलन करते हुए पता चला कि बात तो बिल्कुल ठीक है, एकदम बात योग्य है, उसी वक्त वो उनका प्रयोग चालू कर देगा। सुन लिया तो सुन करके एक बाजू रख लिया अंदर में, वो बात नहीं है, उनका प्रयोग चालू करेगा। वो वर्तमान पात्र है, हाँ वो वर्तमान पात्र थे। और ऐसे होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, उनका बहुत तेजी से काम हो जाता है। जिसे सुनते ही प्रयास चालू होता है, ऐसे वर्तमान पात्र जीव को वैसी भूल नहीं होती कि हम पहले सुने तो ही, सुनते सुनते हमको आत्मलाभ हो जाएगा, वो भूल नहीं होगी, वो सुनते ही अपना प्रयास चालू करेगा। यद्यपि सुनने का राग छद्मस्त अवस्था तक संभव है, षष्ठे गुण स्थान तक ये राग संभव है। षष्ठे गुण स्थान में मुनिराज को भी अपने आचार्य गुरु का उपदेश सुनने का, या परम गुरु तीर्थंकर या केवली का उपदेश सुनने का उनको भी भाव आता है, उतना विकल्प उठता है, उनको भी उठता है। तथापि यथार्थता में किसी भी राग का अभिप्राय नहीं होता। राग होता है तो राग यथार्थ हुआ या अयथार्थ हुआ, कि राग का राग हुआ अभिप्राय समेत हुआ तो अयथार्थ है, और अभिप्राय वही रहा कि तो प्रयोग करने के लिए सुनते हैं, सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, तो वो यथार्थ है। राग करना वो राग का अभिप्राय करना, दोनों में दिन रात जितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, एक सी बात नहीं है। इस तरह से 439 में सुनने वाले को बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिलता है। हम लोग जो रोज सुनते हैं, रोज सुनने का हमारा प्रैक्टिस रहा है, अभ्यास रहा है, तो हमको कहीं गृहित मिथ्यात्म में नहीं चढ़ जाए इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ग्रेट विख्यात हो जाएगा वो बात तो आई, ठीक है, अन्य मती हो जाओगे और क्या। भूल होगी बुद्धिपूर्वक की भूल होगी तो जीव अन्य मती हो जाएगा, वो बात रही। वितराग का मार्ग में राग करने का अभिप्राय नहीं होता। किसी भी परद्रव्य से लाभ होने का अभिप्राय गलत है। अभिप्राय नहीं होता है, परिणाम होता है, तो इस भूमिका का यथार्थता में वो परिणाम आ सकता है, आता है। मुनि भी अपने गुरु के चरण में रहते हैं, मुमुक्षु की क्या बात करते हैं आप, मुनिराज है वो ही अपने गुरु का चरण में रहते हैं, लेकिन अभिप्राय अलग होता है। अभिप्राय में तो वो बात नहीं होती है, हम किसी और से हमको लाभ हो जाए वो अभिप्राय हो जाएगा तो क्या होगा, तो अपने गुरु को वो कहेगा कि मेरा काम आप कर लो, मैं मेरा काम करने को असमर्थ रहा अब तक, अब तो आपको ही मेरा काम करना है, तो मेरे में जो कूड़ा कचरा है वो आपको निकालना है। सकामता के बजाय बड़े महात्मा पुरुष को अपना काम सौंपा नहीं जाता, इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी सेवा उठाना चाहते हैं। हमारे पोस्ट तो सेवा करने की है या सेवा देने की है या सेवा लेने की है, देखिए वो बात तो उल्टी हो जाएगी। अभिप्राय चेक करने में वो बात होती है कि जैसा कि जो अभिप्राय गलत होगा तो अपना काम कराने का भाव आएगा, हमको कुछ दे दो, हमारा काम कर दो, हमको मंत्र दे दो, हमको कुछ ऐसी कोई बात सिखा दो, आप हमको कुछ कर दो, आप कुछ कर दो, वो बात रहेगी, खुद पुरुषार्थ के प्रयोग में नहीं आएगा। जो अभिप्राय वाला, सही अभिप्राय वाला होगा वो प्रयोग के पुरुषार्थ में आएगा और उनको निर्मलता आएगी, और जो गलत अभिप्राय वाला होगा वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो चाहता है कि वो कुछ कर दे हमको, हमारा गुरु कुछ कर दे, वो कुछ कर दे, वो अपेक्षा बुद्धि उसकी रहा करेगी। गलत अभिप्राय में अपेक्षा सामने से कुछ कराने की होगी। देखो मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे में कुछ गुण नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपनी निंदा भी करेगा और कहेगा कि आप जैसे कैसे भी हमारा काम कर दो, बस रोते रोते भी वो बात करेगा कि हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, या हमको कोई मंत्र सिखा दो, मंत्र दे दो जिससे हम काम, हमारा काम हो जाए, या आप कुछ आपकी लब्धि से हमको लाभ कर दो, कहीं ना कहीं ऐसी अपेक्षा रहा करेगी, वो सकामत हो गई और वो यथार्थ नहीं है। नहीं रहा वो काम कराने की बात करेगा, हमें ऐसे है कि जब एक ही भाव गुरु में होता है तब स्वद्रव्य परद्रव्य की चर्चा वहां नहीं, इस स्थान में नहीं चलती, वो स्थान में नहीं चलती। ऐसा है कि ये भक्ति का प्रकरण हमको लेना है या द्रव्यान योग का लेना है, पहले से ये वो स्पष्ट कर दीजिए। भक्ति में द्रव्यान योग नहीं चलेगा और द्रव्यान योग में भक्ति नहीं चलेगी। अच्छा, अगर मुक्ति का प्रकरण लेना है तो मुमुक्षुता में तो भक्ति करो। आप मुमुक्षु है और मुक्ति के मार्ग में जाना है तो मुमुक्षुता में तो भक्ति करो, कोई चारा नहीं है दूसरा, कोई दूसरा कोई चारा नहीं है। द्रव्यानुयोग वहां सीख करके अप्लाई करने को जाओगे तो भक्ति उड़ जाएगी। आपको भक्ति करते तो ये कहना है कि हमारे तारणहार नहीं है, आप हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं, आपसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, कोई वास्ता नहीं है, आप अपने स्वरूप में लीन रहिए, ये बात हो जाएगी। तो स्वच्छंद कहां से होता है, मुमुक्षु की भूमिका में स्वच्छंद कहां से होता है, कि भक्ति में नहीं आता है तो स्वच्छंद होता है। इसलिए कृपाल उद्धव ने एक बहुत बढ़िया स्पष्टीकरण दिया कि देखिए आनंद घन जी ने तत्व द्रव्यानु योग के तत्व ज्ञान के सिद्धांत को तीर्थंकर के स्तुति में स्तमन में रख लिया है। बहुत विचक्षणता है इसके पीछे। तीर्थंकर की स्तुति भक्ति है, वो भक्ति का करता तत्व ज्ञान को सिद्धांत को क्यों लिया, सिद्धांत बोध को क्यों लिया? कि सिद्धांत बोध ऐसा है कि अगर भक्ति साथ में नहीं रही तो स्वच्छंद होने में देर लगेगी। और जिसके द्रव्यानुयोग परिणमन हो गया जिसको, और द्रव दृष्टि जिसकी तिक्खी है उसकी भक्ति भी उतनी ही तिक्खी होती है। देखिए सोगा नहीं है क्या नहीं है? दूसरा उसका सबूत है नियम सार। नियम सार में केवल ज्ञान की क्षायिक पर्याय को पर द्रव्य पर भाव है कहा, है कहा, उपादेय नहीं कहा केवल ज्ञान। और उन्होंने गुरु की भक्ति किया है, जिनेन्द्र की भक्ति किया है, गजब की भक्ति किया है, और उस ग्रंथ में भक्ति का अधिकार लिखा है, अलग सा अधिकार को स्थान दिया है, भक्ति के लिए प्रकरण दिया है उसका, ऐसा क्यों किया? जो ऐसी गाथा लिखते हैं कुंदकुंदाचार्य कि केवल ज्ञान भी परद्रव्य प्रभाव और यही है वो भक्ति का अधिकार क्यों लिखते हैं वही ग्रंथ में? कि उनके भी वो भाव सहज होते हैं, और इसका मतलब वो है कि जिसको समझना है वो समझ लो कि ऐसे परिणाम सहज होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है ही, समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ले कि कोई भी ज्ञानी हो, मुमुक्षु हो, मुनि हो, शुद्धोपयोग में लीन कितना रहेगा? क्षणार्ध, आधा सेकंड, पाव सेकंड, बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेगा? उपयोग मार गया, करेगा क्या? कि वही शुद्धोपयोग आने का कोई प्रयोग है तो वो भक्ति वगैरह है। तो वही करेगा वो, फिर से कम कब में शुद्ध लीन हो जाओ शुद्धोपयोग में, तो भक्ति करेगा तो निर्मलता आएगी, निर्मलता आएगी तो परिणति तेज होगी, परिणति तेज होगी तो फिर से शुद्धोपयोग में आएगा। तो वो तो यथार्थ कार्य पद्धति में आता है वो बात। हाँ ठीक है, अभिप्राय नहीं होता है, अभिप्राय की बात अलग है, परिणाम की बात अलग है, दोनों का खाता अलग है। अभिप्राय में कोई बात अपना स्वरूप के सिवा कोई बात होती नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा से संबंध रखता है अभिप्राय। लिखा है सुगंध जी ने अपने पत्र में लिखा है, हाँ मांगने का, भक्ति मांगने का प्रश्न कहाँ रहा? उनको तो सुनते ही बहुमान आएगा, अपूर्व वचन योग मालूम पड़ेगा, अपूर्व दृष्टि से दिखेगा, भक्ति सहज आएगी। भक्ति वो कोई कृत्रिमता से करने की चीज नहीं है। हाँ भक्ति ज्ञान की राग के पर्याय नहीं लिया,
मूल्यांकन पर भक्ति आई तो ज्ञान के
पर्याय। भक्ति का एक वो है 455 नंबर ले लो, भक्ति बहुमान से होती है और प्रेम गुणों से होता है। भक्ति एक बहुमान की अवस्था है, जबकि प्रेम है एक इससे भी बढ़कर के एक फीलिंग होती है जिसकी डिग्री भक्ति से थोड़ी अधिक होती है। तो भक्ति प्रेम रूप होनी चाहिए, वो भी बात कई जगह ज्ञानियों ने लिया है, कृपा देव ने तो लिया ही है। वस्तु तो शुद्ध भक्ति का भी निषेध करती है। वस्तु मैंने कौन? त्रिकाली शुद्ध आत्मा, अर्थात वस्तु शुद्ध पर्याय से भी निरपेक्ष है। देखिए, त्रिकाली में आदर करना, निषेध करना कोई अवस्था तो है नहीं, फिर भी ऐसा लिखा कि वस्तु तो शुद्ध भक्ति का भी निषेध करती है। तो वस्तु की श्रद्धा निषेध करती है, क्योंकि वस्तु की श्रद्धा तो श्रद्धा का विषयभूत वस्तु जो है वही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धा में आया तो साथ में निषेध भी आया कि कोई पर्याय का मुझे स्वीकार नहीं है। वो वस्तु की मुख्यता से कहा, श्रद्धा की मुख्यता से नहीं कहा। श्रद्धा में क्या आया कि वस्तु में हूँ, तो श्रद्धा निषेध करती है मतलब मैं निषेध करता हूँ, हो गया क्या नहीं हो गया? अभेदता वाचक श्रद्धा और श्रद्धा का विषय को अभेद लेकर के ये कथन कहा है, ये बात चली है। नहीं, वो बात ज्ञान प्रधान है थोड़ी, दूसरी बात है। उसमें तो शुद्ध पर्याय को ही आत्मा कहा है, तो द्रव से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय को आत्मा, यहाँ तो द्रव की बात चलती है। वस्तु तो शुद्ध भक्ति का भी निषेध करती है, अर्थात तो वस्तु मैंने मैं शुद्ध पर्याय से निरपेक्ष हूं। पर्याय मेरा ध्यान करो तो करो, पर्याय मेरी पूजा करो तो करो, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। जो पर्याय अंतर्मुख होती है वो मेरी प्रदक्षिणा करती है। अब मैं तो मेरु के समान अडिग हूं, पर्याय प्रदक्षिणा कोई करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। अनादि से वो पर्याय उल्टी चली तो मेरा क्या बिगड़ा, और वो भी सीधी चलने लगी तो मुझे कौन सी अपेक्षा है। तुम टेढ़ी चलती थी तो तुम दुखी होती थी, तुम सीधी चलती हो तो तुम सुखी होती हो। मैं तो अनंत सुख का भंडार हूं, मेरे में कुछ आता जाता नहीं है। जाओ, शुद्ध पर्याय से भी निरपेक्ष है। तो जो निशुद्ध भक्ति है, निश्चय भक्ति है, वो तो अपना परमात्मा स्वरूप की भक्ति है। तो वो परमात्मा स्वरूप भक्ति मेरी पर्याय मेरी भक्ति करे, वो भी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है भक्ति की। जैसे ज्ञानी को किसी की भक्ति की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे आत्मा को भी अपनी पर्याय की भक्ति की अपेक्षा नहीं होती। तो मुझे टॉप लेवल की बात है सोगानी जी की। शुद्ध भक्ति, अब जो शुद्ध भक्ति है वो व्यवहार भक्ति का निषेध करती है। स्वरूप में जो लीन होता है भक्ति से, तो भक्ति का राग का निषेध करके अंदर लीन हो जाता है, छोड़ करके राग का छेद करके अंदर में जाता है। तो व्यवहार भक्ति का निषेध यानी उपेक्षा करता है। और व्यवहार भक्ति जो होती है देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष की, वो अन्य सब पदार्थों की भक्ति का निषेध या उपेक्षा करता है, वो संसार भक्ति को तोड़ता है। जिसको संसार भक्ति ज्यादा है अपना कुटुंब परिवार की भक्ति ज़्यादा है, कुटुंब परिवार के परिणाम होते रहते हैं, शरीर की भक्ति ज़्यादा है, संयोग की भक्ति ज़्यादा है, उनको कहेंगे कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति कर, तभी तेरा परिणाम छूटेगा। अरे सुगनी जी खुद लिखते हैं कि जिस संयोग के बीच में मुझे नहीं रहना चाहिए वैसे संयोग में मुझे रहना पड़ता है, मेरी कोई अयोग्यता है वरना मेरा तो गुरुचरण में ही वास होना चाहिए, लेकिन मेरी भक्ति की कमी है। इतनी उत्कृष्ट भक्ति करने वाला क्या लिखता है कि मेरी भक्ति की कमी है वरना मेरा निवास तो गुरुचरण में ही होता। तो मेरी कोई संसार भक्ति चल रही है, वो संसार भक्ति तब टूटेगी तब छूटेगी जब मेरी गुरु भक्ति बढ़ेगी। ऐसा ज्ञान दशा में लिखते हैं, तीव्र ज्ञान दशा है तो भी ऐसा लिखते हैं। तो ज्ञानी ने व्यवहार भक्ति की अपेक्षा रखी कि नहीं की? वचन में तो आता है, अभिप्राय अलग बात होता है, वचन में तो आएगा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, वो बात है।
भक्ति भी कोई जीव है?
नहीं, या तो जीव संसार भक्ति करेगा या तो जीव धर्म की भक्ति करेगा। धर्म की भक्ति दो तरह की, व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति। तो यहाँ तो भक्ति के संबंध में कुछ चर्चा चली होगी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। एकदम स्पष्ट बात है, अब 47 नंबर का जो पत्र है, October 1963, 33 साल पहले का, 32 साल पहले का पत्र है। ओम चैतन्य मूर्ति श्री सदगुरु देवाय नमः। गुरुदेव को चैतन्य मूर्ति के रूप में देखते हैं, शरीर की मूर्ति के रूप में नहीं देखते। पत्र आपके समय समय पर तीन मिले, अब मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, करीबी एक माह पलंग पर रहना हुआ, तो वो लिखने वाले को मालूम होगा कि अब बीमार चल रहे हैं, तो चिंता का भी कोई बात लिया और लिखा होगा कि हमको तो आपका स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। तो लिखते हैं कि चिंता अथवा राग तो स्वयं को हानिकारक है, स्वमे अथवा परमे अकार्यकारी है। आप मेरी चिंता करते हो लेकिन वो राग कोई काम में आएगा नहीं, वो तो अकार्यकारी, इससे कोई मरा स्वास्थ्य सुधरेगा नहीं। चाहे स्व का राग करो चाहे पर का राग करो, राग तो फालतू का ही होता है, कार्यकारी होता नहीं है। आता है तो आता है लेकिन कार्यकारी होता नहीं है। अतः हर समय स्वभाव बल से सहज निषेध पूर्वक होवे तो फल आदरणीय नहीं हो सकता। इसलिए जो राग आता है हर समय तो स्वभाव बल से उसका निषेध होना चाहिए, ऐसे कोरा निषेध नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो शुभ भाव है। तो स्वभाव का आश्रय से, स्वभाव का पुरुषार्थ पूर्वक उसका निषेध होने में हुए तो उस राग का फल है उसकी अपेक्षा रहेगी नहीं, वरना राग होगा और राग का फल की अभिलाषा भी हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। इन दिनों साधर्मी भाइयों का पत्र व्यवहार कुछ बढ़ा है, परिचय थोड़ा बढ़ गया था एक आध पिछले साल से, तो सब लोग पत्र लिखने लगे थे, परंतु सहज विकल्प निमित्त जवाब लिखित जावे वही अच्छा है। विकल्प आएगा तो मैं वो प्रति उत्तर लिख दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखूंगा। अतः जवाब देरी आदि की प्रतीक्षा अधिक नहीं रखना ही अच्छा है। मेरी ओर से अपेक्षा मत रखिए कि जवाब मिल जाए तो ठीक है, या देरी नहीं लगे तो ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब मिले तो ठीक है। हमारा तो ठिकाना नहीं है, कभी जवाब दे देते हैं, कभी नहीं भी देते, कभी देरी से भी देते हैं, जैसा भी विकल्प चलेगा वैसा होएगा। विकल्प का कोई ठिकाना नहीं है। आशा है परम उपकारी श्री सदगुरु देव सुख शांति में विराजते होंगे। मैंने सोनगढ़ से ही किसी मुमुक्षु ने पत्र लिखा है। इस माह के गुजराती आत्मधर्म में वो गुजराती अच्छी तरह पढ़ते थे, गुजराती बराबर पढ़ सकते थे। इस माह के गुजराती आत्मधर्म में अनुभव रस की भीगी हुई वाणी वो प्रसन्न मुद्रा देखकर चित्त डोल उठा। गुरुदेव का फोटो भी होगा उसमें, प्रसन्न मुख मुद्रा को का दर्शन किया और अनुभव रस की भीगी हुई वाणी, वाणी ऐसी नहीं थी, अनुभव रस से भीगी हुई वाणी थी, वो देख करके मेरा चित्त तो डोल उठा। वो वाणी सुनते हैं तो कितने प्रेम से सुनते हैं। वाणी तो वाणी है, सुनने वाले तो सुनने वाले होते हैं, पढ़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन चित्त प्रसन्न हो जाए। आपने फरमाया है, गुरुदेव ने फरमाया है, उस पर बहुत भाव आया है। हमारो के ज्ञान नो मैंने केवल ज्ञान नो ध्वज के पीछे फुल पॉइंट होना चाहिए। हमारो केवल ज्ञान नो ध्वज, गुजराती में गुजराती आत्मधर्म छे ने, हमारो केवल ज्ञान नो ध्वज फरकी रह्यो छे। शुं के छे गुरुदेव अत्यारे एम के छे आया सोनगढ़ में बैठा बैठा के अमारो केवल ज्ञान नो ध्वज फरकी रह्यो छे। अमे जोई छी के अमारुं केवल ज्ञान हवे दूर नथी, केवल ज्ञान नी धजा जोईए छीए अहींथी। કૃપાળુદેવે એક પત્ર લખ્યો છે કે કબીરનું પદ વાંચ્યું અને ધજાના દર્શનની વાત કરી તો બહુ ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ ગયું। એ કઈ ધજા હશે? એ કેવળ જ્ઞાનની ધજા હતી, પોતાનું કેવળ જ્ઞાન અતિ સમીપ જુએ છે। અમારો કેવળ જ્ઞાનનો ધ્વજ ફરકી રહ્યો છે, કેવળ જ્ઞાનનો ઝંડો ફરકાવતા ફરવા ફરકાવતા અલ્પકાળમાં મોક્ષમાં જશો। હવે અલ્પકાળમાં મોક્ષમાં જવાના છે, પણ કેવળ જ્ઞાનનો ઝંડો ફરકાવતા ફરકાવતા, એટલે કેવળ જ્ઞાનની વાતો કરતાં કરતાં અમે મોક્ષમાં જવાના છે। કેવળ જ્ઞાન લેવામાં અમારી વાતો પણ કેવળ જ્ઞાનની જ રહેવાની છે। આ કાળમાં કેવળ જ્ઞાન છે નહીં, નામ છે ને તેમ છે ને, એ વાત નથી, એ વાત નથી। કેવળ જ્ઞાન જાણે અમને આ કાળમાં જ પ્રાપ્ત ન થઈ જાય એવી રીતે કેવળ જ્ઞાનને સમીપ જુએ છે। હા, એ તો ઘણાને એવું થઈ જાય છે, દુરુપયોગ થાય ને તેને એમ થાય કે હમણાં કેવળ જ્ઞાન લઈ લેશું, કેમ કે સદુપયોગ પોતાના સ્વયં સંચાલિત પરિણામથી થયો, કોઈનો આધાર લીધા વિના। જ્યારે એમ પોતાને ખ્યાલ આવ્યો કે આ રીતે જો સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જવાય છે તો કેવળ જ્ઞાન પણ સ્વરૂપમાં સ્થિર થતાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો હવે મને શું કેવળ જ્ઞાન થવામાં વાંધો શું આવે? સવાલ જ નથી કાંઈ, હવે હમણાં કેવળ જ્ઞાન લઈ લઈશું। इन वचनों को वारंवार रस लेकर भी वृत्ति तृप्त नहीं हुई। गुरुदेव ना आ वचनों पर घणो रस आयो, तृप्त न तो थवातो। गुरुदेव केवल ज्ञान नो झंडो फरकावता फरकावता हेला जाय छे, जाने केवल ज्ञान नो झंडो लेने फरकावता फरकावता मोक्ष बाजू હેલા જ જાય છે, એમ જોવે છે પોતે. શું ગુરુદેવને એવી રીતે જોવે છે? કેમ કે અનુભવથી કેવળ જ્ઞાન મળશે ને, કેવળ જ્ઞાનનું સાધન તો સ્વાનુભવ સિવાય કોઈ છે નહીં. ઓહો, ગુરુદેવ તો શુભોપયોગમાં લીન થતાં થતાં કેવળ જ્ઞાનનો ઝંડો ફરકાવી રહ્યા છે. ગુરુદેવ પ્રત્યે ભાવ બહુ આવ્યો છે, ભક્તિભાવ ઘણો આવ્યો છે. ઇન વચનો કો વારંવાર રસ લેકર ભી વૃત્તિ તૃપ્ત નહીં હોય. હે, હા, યથાર્થ ભક્તિ. કેવી ભક્તિ? યથાર્થ ભક્તિ. યથાર્થ ભક્તિ કેવી છે? કે યથાર્થ ભક્તિ પરમ પદાર્થ છે. યથાર્થ ભક્તિ પરમ પદાર્થ છે. જ્ઞાનીના ચરણમાં રહીને અગર થાય તો ક્ષણવારમાં મોક્ષ દેવી છે, એવી ભક્તિ છે. હૃદય જાણે એ તો એ કોઈ સામાન્ય માણસના અંદાજનો વિષય. મેં અહીંયા બીઠા દીયા હે, તો મારે છે જે વાત થઈ, મારે સાથે જે વાત
થઈ.
અધિક ક્યાં લિખું? પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતે હૈ કે જ્ઞાનીને રાગાદી ભાવો પોતાના સ્વભાવપણે જરા પણ ભાસતા, ભક્તિ કરતા જાય છે ને કહેતા જાય છે કે જ્ઞાનીને રાગાદી ભાવો પોતાના સ્વભાવપણે જરા પણ ભાસતા નથી. સ્વરૂપની બહાર જ ભાસે છે. એ તો સ્વરૂપની બહાર રાગના કૂદકા જોયા કરે છે કે રાગ કૂદકા માર્યા કરે છે, થાકીને મન થઈ જશે. યહી વેદન હમ સબકો દ્રઢતર હોતા જાવે, યહી ભાવના હૈ. આવું પોતાના સ્વભાવનું વેદન આપણને બધાને દ્રઢપણે થઈ જાય, વધારે દ્રઢતા તે થાય, એવી ભાવના છે. ધર્મસિંહ નિહાલ ચંદ્ર ફુગાડી એ રીતે એમને કોઈ સોનગઢના મુમુક્ષુ ઉપર પત્ર લખ્યો છે. અને ગુરુદેવની ભક્તિ આ પત્રમાં લગભગ ભાગ્યે જ કોઈ પત્ર ખાલી છે કે જેમાં ગુરુદેવની ભક્તિ એમને કરી નથી. પોતાના ઉપકારી ગુરુને એ ભૂલતા નથી, ભૂલી શકતા બે છે. એવું જ હોય છે, ઉપયોગ બહાર જાય તો ત્યાં જ જવાનો છે. બહુ કુદરતી વસ્તુ છે, એ વસ્તુ બહુ જ સ્વાભાવિક અને બહુ જ કુદરતી છે. યથાસ્થાનમાં છે એટલે એ યથાસ્થાનમાં જે હોય એને બીજા કોઈ સિદ્ધાંતને આડ લઈને એનો નિષેધ કરવો તે યોગ્ય નથી. અને સિદ્ધાંતની ચર્ચા જ્યાં ચાલતી હોય ત્યાં બીજી કોઈ વાત ઉપર વાતને વચ્ચે લાવીને સિદ્ધાંતની ઉપેક્ષા કરવી કે સિદ્ધાંતનો નિષેધ કરવો એ પણ કરવા યોગ્ય. કોઈ પણ એક વિષયની પક્ષબુદ્ધિથી બીજા યથાર્થ વિષયના પ્રતિપાદનનો નિષેધ થાય એમ થવું ઘટે. પક્ષબુદ્ધિ એટલે શું? કે કોઈ એક વાતનો પક્ષ થઈ જાય. થઈ ગયો. અને આચાર્યોએ તો નિશ્ચયનિર્ણા પક્ષનો પણ નિષેધ કર્યો છે. તો પછી શુદ્ધાત્માનો નિશ્ચયનિર્ણયનો વિષય તો શુદ્ધાત્મા છે, એના પક્ષનો નિષેધ કર્યો છે તો બીજો કોઈ પક્ષ રાખવાનો રહ્યો હવે એ કયો? બાકી તો બધા પક્ષ વ્યવહાર નહીં ના છે. એને છોડીને જેટલા પક્ષ છે તો બધા વ્યવહાર નહીં ના છે. ત્યાં નિશ્ચયનિર્ણયના પક્ષનો નિષેધ છે, કહેવાની જરૂર નથી કે વ્યવહાર નિર્ણયના પક્ષનો નિષેધ કરવાનો હોય. એ રીતે નુકસાન પક્ષબુદ્ધિથી અભિપ્રાયનો દોષ ઊભો થઈ જાય. અભિપ્રાયનો દોષ ઊભો થાય તો અભિપ્રાયનો વિપર્યાસ અનુભવ થવા દે. હે, પછી તો કઈ ઠેકાણું નહીં રહે, ક્યારે શું થશે એનું કઈ ઠેકાણું. હા, એવું પણ થઈ જાય. કોઈને શૈલી નો રાગ થાય, એ શબ્દ નો રાગ છે, શબ્દ નો રાગ છે, એ શૈલી નો રાગ છે, ભૂતગળ નો રાગ છે. બધા જ્ઞાનીઓની વિષય પ્રતિપાદનની શૈલી મૌલિક, એકદમ આગવી, સ્વતંત્ર અને મૌલિક હોય છે. અને એ બધી મૌલિક શૈલીમાં પોતપોતાની સુંદરતા હોય છે. એ સુંદરતાના દર્શન થવા જોઈએ, નહીતર આ જ્ઞાનીની શૈલી મને ફાવે છે ને ગમે છે ને પેલા જ્ઞાનીની શૈલી મને ફાવતી નથી ને ગમતી નથી, એ એક જ્ઞાનીમાં આનંદ જ્ઞાનીનો નિષેધ કરી નાખશે. અને એની શૈલી જીનવાણી છે, એ જીનવાણીનો નિષેધ પણ આવી જશે. બધું એટલે આખો તો મોટો અપરાધ થઈ જાય. સાચવવું જ પડે, બધું સાચવવું પડે. આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તો ચારે કોરથી સાચવવું જોઈએ. રસ્તો એવો સાંકડો છે અને ઝાડા ઝાંખરા ને કાંટા ચારે બાજુ ઉગેલા છે, સંકોરીને હાલો, નહીતર ક્યાંક ને ક્યાંક ભરાઈ પડો. સીધી વાત છે.